भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अंतर्गत अध्याय 7 हम पढ़ रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस अध्याय का नाम है इस अध्याय का नाम है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। पांच स्वरूप आप लोग देख रहे हैं मेरे ऊपर, 5 पंच तत्व। तो आज की जो कथा है वो इनके विषय में है, जो पंच तत्व हैं, है ना, पंच तत्व। हाँ, सब लोग आगे आ जाइए। पंच तत्व के नाम, पंच तत्व के नाम आप लोग जानते हैं क्या है? पहला नाम क्या है पंच तत्व में? सबसे पहले कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य कहाँ पर हैं? जो पीले वस्त्र धारण किए, श्री कृष्ण चैतन्य। और दूसरे प्रभु नित्यानंद, जो नीले वस्त्र धारण किए हैं। और तीसरे श्री अद्वैत, जो सफेद वस्त्र धारण किए हैं, सफेद दाढ़ी है, श्री अद्वैत। और चौथे गदाधर, लाल वस्त्र धारण किए, गदाधर। और पांचवें श्रीवास, सफेद वस्त्र धारण किए हैं, मृदंग बजा रहे हैं। तो पंच तत्व हैं ये, 5 तत्व हैं, इनके विषय में है। मैं सर्वप्रथम उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो संपत्ति से हीन व्यक्ति के लिए जीवन के चरम लक्ष्य हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए एकमात्र उपाय हैं। इस तरह मैं उन भगवान की भक्ति के योगदान के विषय में लिखने जा रहा हूँ। अगत्य गतिम नत्वा हीनार्थाद साधकम श्री चैतन्यम लिखिते स प्रेम भक्ति वदान्यता। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करता हूँ, जिसने उनके चरण कमलों की शरण ली है वो सर्वाधिक धन्य है, सबसे अधिक सफल, सबसे अधिक भाग्यशाली कौन है? जिसने श्री चैतन्य के चरणों की शरण ली है। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य तार चरणाश्रित से बड़े धन। मैं प्रारंभ में गुरु तत्व की व्याख्या कर चुका हूँ, अब मैं पंच तत्व की व्याख्या करूँगा। पूर्व गुरुवादि छह तत्व कैला नमस्कार, गुरु तत्व कही आछी ए बे पांचे रे विचार। ये पांचों तत्व श्री चैतन्य के साथ अवतरित होते हैं और इस तरह महाप्रभु अत्यंत हर्ष पूर्वक अपना संकीर्तन आंदोलन संपन्न करते हैं। पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य रसंगे, पंच तत्व लैया कारण संकीर्तन रंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से इन पांचों तत्वों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दिव्य धरातल पर सभी वस्तुएं परम पूर्ण हैं। तथापि आध्यात्मिक जगत में विविधता होती है और इन आध्यात्मिक विविधताओं का आस्वादन करने के लिए उनमें अंतर करना आवश्यक है। पांचों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तो भी अंतर है क्योंकि विविधता है। पंच तत्व एक वस्तु नाही के छु भेद, रस आस्वादित तब विभेद विभेद। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं, भक्त के विस्तार के रूप में प्रकट हुए हैं, भक्ति अवतार के रूप में प्रकट हुए, शुद्ध भक्त के रूप में प्रकट हुए और भक्त शक्ति के रूप में प्रकट हुए। ये पांच तत्व जो है सबसे पहले क्या कौन से हैं? पहले तो है भक्तो भक्त तत्व, दूसरे भक्त के विस्तार तत्व, तीसरे भक्त के अवतार तत्व, चौथे शुद्ध भक्त के तत्व और पांचवें भक्त शक्ति तत्व। ये पांच रूप हैं। पंचतत्वात्मकम् कृष्णम् भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतारम् भक्ताख्यम् नमामि भक्त शक्तिकम्। समस्त आनंद के कारण श्री कृष्ण परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ना तो कोई कृष्ण से बड़ा है ना उनके तुल्य है, फिर भी वे महाराज नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। सबसे पहले पंच तत्व में सबसे पहले जो तत्व हैं वो कौन है? कृष्ण ही हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर है, अद्वितीय नंदात्मा जयरस के शेखर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य के परम भोक्ता हैं। भगवान कृष्ण अनेक लीलाओं का भोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको आनंद मिलता है किस लीला में? रास नृत्य में। वे ब्रज की बालाओं के नायक हैं, अन्य सारे उनके संगी हैं, बाकी सब लोग उनके संगी हैं, लेकिन असली नायक और भोक्ता कौन है? कृष्ण है। रासा दे बेला सी ब्रज लाल नानागर आर जत सब देख तार परी कर। वही श्री कृष्ण अपने समान संगियों के साथ श्री चैतन्य के रूप में अवतरित हुए। तो पंच तत्व में सबसे पहले तत्व है श्री चैतन्य। सही कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य सही परी कर गण संग सब धन्य। परम नियंता श्री चैतन्य एकमात्र भगवान है जो भाव विभोर होकर भक्त बन गए हैं। भाव विभोर होकर के वो भक्त बन गए हैं और फिर भी उनका शरीर दिव्य है और भौतिक रूप से कलुषित नहीं। भगवान भक्त की लीला करते हैं तो भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो जीव बन गए। अगर भगवान जीव की तरह भी अगर चेष्टाएं करते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान जीव बन गए। भगवान का जो तत्व है वो अच्युत है, उसमें किसी प्रकार की कमी और किसी प्रकार का पतन नहीं है। एकल ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर। श्री कृष्ण का माधुरी रस इतना अद्भुत है कि स्वयं कृष्ण इसका पूर्णतया आस्वादन करने के लिए भक्त का रूप धारण करते हैं। देखो भक्त को जो है जो आनंद प्राप्त होता है भगवान की इच्छा होती है वो आनंद प्राप्त करने की। भगवान के रूप में वे अपना आनंद नहीं ले पाते हैं तो भगवान भक्ति रूप में अपना आनंद देते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान बनने से अच्छा क्या है? भक्त बनना। लोग भगवान बनना चाहते हैं, है ना, लेकिन भगवान को भी आनंद नहीं है भगवान बनने में, वो भक्त बन करके अपना आनंद लेना चाहते हैं। तो ये शिक्षा मिलती है। कृष्ण माधुर्य रे एक अद्भुत स्वभाव आपना आसादित है कृष्ण करे भक्त भाव। इसी कारण से परम शिक्षक श्री चैतन्य भक्त का रूप स्वीकार करते हैं और नित्यानंद को अपना बड़े भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। नित्यानंद दूसरे तत्व हैं, सबसे पहले तत्व हैं श्री चैतन्य। इते भक्त भाव धारे चैतन्य गोसाई भक्त स्वरूप धार नित्यानंद भाई। और अद्वैताचार्य श्री चैतन्य के भक्त अवतार हैं, भक्त रूप भक्त स्वरूप और भक्त अवतार। भक्त रूप कौन है? चैतन्य। और भक्त स्वरूप नित्यानंद और भक्त अवतार अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य श्री चैतन्य के भक्त अवतार हैं, इसलिए ये तीनों तत्व यानी चैतन्य और नित्यानंद और अद्वैत ये आश्रय देने वाले हैं या प्रभु हैं यानी विष्णु तत्व हैं। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई ए तीन तत्व सबे प्रभु करी गाई। तो तीनों प्रभु हैं लेकिन तो भी अंतर है, एक महाप्रभु हैं और अन्य दो प्रभु हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु, अद्वैता प्रभु है ना, ये दोनों प्रभु महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं। एक महाप्रभु आर प्रभु दो ए जन दो ए प्रभु सेवे महाप्रभु रे चरण। ये तीन तत्व सभी जीवों के द्वारा पूजनीय हैं, तीन तत्व श्री चैतन्य नित्यानंद और अद्वैत। हाँ, ये तीन तत्व सभी जीवों द्वारा पूजनीय हैं और चौथे तत्व गदाधर उनके आराधक अर्थात पूजक हैं। यही तीन तत्व सर्वाराध्यकारी मानी चतुर्थ जे भक्त तत्व आराधक जानी। और आराधक है और ये शुद्ध भक्त असंख्य हैं। पांचवें तत्व हैं शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त असंख्य हैं जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख हैं। श्रीवास ठाकुर प्रमुख हैं, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद इसलिए कहते हैं श्रीवास आदि। तो भक्त तत्व जो है पांचवें तत्व इनकी तो कोई संख्या ही नहीं है कितने हैं, लेकिन श्रीवास सब प्रमुख हैं। नारद जी के अवतार हैं। श्रीवासा दे जाते कोटि कोटि भक्त गण शुद्ध भक्त तत्व मध्यता सब गणन। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान के अंतरंग शक्ति का अवतार मानना चाहिए। तो ये शक्ति तत्व भक्त शक्ति हैं, गदाधर पंडित भक्त शक्ति हैं है ना। अंतरंगा शक्ति की अंतरंगा शक्ति विस्तार राधा रानी है, अंतरंगा शक्ति गदाधर पंडित वही राधा रानी है। गदाधर पंडितादि प्रभु शक्ति अवतार अंतरंग भक्त करि गणन जहारे। अंतरंग भक्त यह शक्ति भगवान की लीलाओं में नित्य संगी होते हैं। भगवान केवल उन्हीं के साथ संकीर्तन आंदोलन के प्रसार हेतु अवतरित होते हैं, उन्हीं के साथ वे माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं और केवल उन्हीं के साथ वे जन सामान्य को इस भगवत प्रेम का वितरण करते हैं, यानी शक्ति के साथ। और शक्ति कौन है? गदाधर पंडित वही राधा रानी। तो कृष्ण अवतार में जो राधा रानी थी भगवान की शक्ति, वही गदाधर पंडित हैं चैतन्य अवतार में पुरुष के रूप में। जासा बालैया प्रभु जासा बालैया प्रभु नित्य विहार है, यासा बालैया प्रभु कीर्तन है प्रचार है, यासा बालैया करे प्रेम आस्वादन है, यासा बालैया दान करे प्रेम धन है। कृष्ण के गुण दिव्य प्रेम के कारण है। जब कृष्ण थे तब ये प्रेम निश्चित रूप से उनके साथ आया था, किंतु वो पूरी तरह से सील बंद था। अगर सील बंद हो तो किसी को नहीं मिलेगा। भगवान जब कृष्ण आए तो कृष्ण प्रेम उस समय सील बंद करके रखा गया था, तो किसी को नहीं मिला कृष्ण प्रेम। किंतु जब श्री चैतन्य अपने पंच तत्व के संज्ञों के साथ आए तो उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए उसकी सील तोड़ करके उसे लूट लिया, सील तोड़ी। और ज्यों ज्यों उसका आस्वादन करते गए त्यों त्यों और अधिक आस्वादन करने की उनकी तृष्णा बढ़ती गई। तो कृष्ण प्रेम जो है सील बंद था, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं भी उसका आस्वादन नहीं किया और ना किसी को आस्वादन मिला कृष्ण प्रेम का। लेकिन चैतन्य अवतार में उन्होंने सील तोड़ दी और आस्वादन किया कृष्ण प्रेम का, तो उनकी भी इच्छा बढ़ती गई और आस्वादन करने की है। किसी चीज़ को अगर आप सील तोड़ दें और असीमित रूप से आप अगर खाते हैं आस्वादन करते हैं तो आपकी तृप्ति हो जाती है, आप मतलब फिर खाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन कृष्ण प्रेम ऐसा है कि जितना आस्वादन करें उतना और तृष्णा बढ़ती है, तो इनकी तृष्णा बढ़ती गई। सही पंच तत्व मेरी पृथ्वी आसिया पूर्व प्रेम भंडारे रे मुद्रा उघाड़िया पांचे मेले लुटे प्रेम करे आस्वादन जाते जाते पिए तृष्णा बाढ़े अनुचन। स्वयं श्री पंच तत्वों ने पुनः पुनः नृत्य करके इस प्रेम अमृत को पीना सुगम बनाया। वे नृत्य करते थे, रोते थे, हंसते थे और गाते थे, मानो पागल हैं, पागल की तरह। ये पंच तत्व जो है इस तरह उन्होंने भगवत प्रेम का वितरण किया पुनः पुनः पी आई हाय महा मत नाचे कांदे हासे गाए जय छे मदे मत। कृष्ण प्रेम का वितरण करते समय श्री चैतन्य और उनके संगियों ने कभी ये विचार नहीं किया कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। कृष्ण प्रेम सबको तो नहीं मिलता, लेकिन इस बार उन्होंने जो है तो ऐसा छूट कर दी है? तो कभी कभी कुछ विशेष अवसर में छूट हो जाती है। लो बिना किसी शुल्क के बांटा फ्री में, कभी कभी बहुत महंगी चीज़ भी बांट दी जाती है फ्री में, लुटा दी जाती है, लूटो लूटो है ना। तो कोई विचार नहीं किया कि कौन इसके योग्य है कौन इसके योग्य नहीं है, और वितरण कहाँ पर करें और कहाँ नहीं करें। हर जगह वितरण किया और हर व्यक्ति को दिया, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। जहाँ कहीं भी अवसर मिला पंच तत्वों के सदस्यों ने, ये पंच तत्व के सदस्य पांचों ने प्रेम का वितरण किया, कृष्ण प्रेम का वितरण किया। पात्र पात्र वे चरना ही ना ही स्थान स्थान, जे जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। यद्यपि पंच तत्वों ने प्रेम के भंडार को लूटा और इसको आस्वादन किया और बांटा, फिर भी उसमें कोई कमी नहीं आई, इस भंडार में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि भगवान का भंडार है, कभी घटता नहीं है। उन्होंने खूब लूटा और लुटाया, ये भंडार कम नहीं हुआ ना, क्योंकि अद्भुत भंडार इतना भरा पूरा है कि ज्यो ज्यो प्रेम का वितरण किया जाता है क्यों तो इसकी आपूर्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। जितना इसको में लुटाओ और इसको जो है निकालो, उससे सौ गुना और आता है इसके अंदर। जैसे अक्षय पात्र में जितना निकालो वो भरा रहेगा, है ना। ऐसे प्रेम का भंडार भी अच्छा है। लूटी या खाई या दिया भंडार है ओ जाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम सत्य गुण बाढ़े। भगवत प्रेम की बाढ़ से सारी दिशाएं आप्लावित होने लगी, प्रेम की बाढ़। और इस तरह से युवक और बूढ़े स्त्रियां बच्चे उस बाढ़ में डूबने लगे। उछाले ल प्रेम वन्य चौधरी के बेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक जो बसा बारे डुबाए। और उसमें प्रेम की नदी में जो है चाहे अच्छे व्यक्ति हो और चाहे दुर्जन हो और चाहे लंगड़े हो चाहे अंधे हो और चाहे मूर्ख, सब सबको डुबा दिया। सज्जन दुर्जन पंगु जाले अंधगण, प्रेम एवं न्याय डुबाए ले जगते रह जन। जब पंच तत्वों ने देखा, यानी इन पांचों ने देखा कि सारा संसार कृष्ण प्रेम में डूब चुका है और जीवों में भौतिक भोग का बीज पूरी तरह नष्ट हो चुका है। जैसे पानी की बाढ़ आए तो बीज सब नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो भौतिक भोग के बीज नष्ट हो गए, अब अंकुरित होंगे नहीं। अब बाढ़ चली भी जाए तो भी जितने बीज थे वो नष्ट हो गए, अब अंकुरित होंगे नहीं, भौतिक भोग के बीज नष्ट हो गए। तो ये पांचों बहुत प्रसन्न हुए, पांचों देख रहे हैं ना, इन पांचों को बड़ी खुशी हुई कि भौतिक भोग के बीज नष्ट हो गए और बाढ़ में सब डूब गए। जगत डूबे लजीव है लीज है नाश है, ता देखी पांच जन निर्परा में उल्लास है। और ये पांचों जो है प्रेम की जितनी अधिक वृष्टि कराते हैं उतनी अधिक बाढ़ और बढ़ती जाती है और वो सारे विश्व में व्याप्त होती जाती है। जत जत प्रेम है वृष्टि करे पंच जाने, तत तत बाढ़े जल व्यापी त्रिभुवने। लेकिन कुछ लोग बच गए, कुछ लोग बच गए। कौन कौन बच गए जो नहीं डूबे? मायावादी लोग नहीं डूबे, और सकाम कर्मी नहीं डूबे, और तार्किक लोग जो तर्क करते हैं वो नहीं डूबे, निंदा करने वाले भी नहीं डूबे, और अभक्त भी नहीं डूबे, और अधम लोग नहीं डूबे। तो उनको जो है प्रेम का जल स्पर्श नहीं हुआ। मायावादी कर्म निष्ठे कुतार के कैगन निंदक पाखंडी जत पड़ो या अधम से सब महा दक्ष धाया पालाई ले से वन्यता सबारे छोड़े ते नारे ले। तो भाग करके उन्होंने अपनी रक्षा कर ली, वो लोग नहीं डूबे। तो फिर ये देखकर कि ये लोग तो भाग रहे हैं, श्री चैतन्य ने सोचा मेरी क्षति प्रत्येक व्यक्ति प्रेम की इस बाढ़ में डूब जाए, किंतु कुछ लोग तो भाग निकले, अतः मैं उन्हें भी डुबाने का कोई उपाय निकालूंगा। भगवान फिर भी उनको डुबाना चाहते हैं, सोच रहे हैं इनको भी डुबाना है किसी प्रकार से, भाग तो रहे हैं। ताहा देखी माँ प्रभु कार्य न चिंतन जगत डूबाई थे आमी कारी लू जतन के है एड़ा एल प्रतिज्ञा है ले भंग तसा बा डूबे थे पाते के छुरंग तसा बा डूबे थे पाते बे के छुरंग। इस प्रकार महाप्रभु ने पूरी तरह विचार करने के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण किया। क्या एक नाटक किया, नाटक क्या नाटक किया भगवान ने, संन्यास आश्रम ग्रहण किया। ये प्रेम में नहीं डूब रहे हैं तो कुछ उपाय करना पड़ेगा, तो उपाय क्या किया कि भगवान ने संन्यास लिया। ये ते बाली माने के छुकारी या विचार है संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार है। तो 24 वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहे और 25वें वर्ष के आरंभ में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। श्री चैतन्य का जीवन काल कुल मिलाकर कितना है, 48 वर्ष। 48 वर्ष में आधा यानी 24 वर्ष तक भगवान गृहस्थ आश्रम में रहे और बाकी 24 वर्ष संन्यास आश्रम में। 26 वर्ष रचिला गृहस्थ आश्रम में पंचविंशति वर्षे कैला जाति धर्मे। संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर श्री चैतन्य ने उन सबका ध्यान आकृष्ट किया जो भागे थे, जो प्रेम की बाढ़ में नहीं डूबे, भाग गए और अपनी रक्षा कर ली। तो श्री चैतन्य ने जब संन्यास आश्रम ग्रहण किया तो सन्यासी के रूप में वो लोग अब क्या आकृष्ट हुए, अरे तो सन्यासी हैं, है ना, तो पास आए, है ना। तो भगवान की ये कपट चाल है, भगवान की कपट चाल, सन्यासी बन गए। तो भगवान के रूप में वो श्री चैतन्य को नहीं मानते और कृष्ण और कृष्ण प्रेम में नहीं डूबे, तो भगवान ने सन्यासी का रूप धारण कर लिया। तो सन्यासी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये हमसे श्रेष्ठ हैं। हालांकि भगवान है, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान को कोई व्यक्ति अपने से थोड़ा भी श्रेष्ठ मान ले तो उससे भी उसका लाभ है। तो भगवान ने संन्यास, चलो तुम ये भगवान के रूप में नहीं मानते हो, सन्यासी के रूप में मानो और मेरा सम्मान करो। तो भगवान ने संन्यास लिया सम्मान प्राप्त करने के लिए, और सम्मान अगर प्राप्त होगा तो उससे उनको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर श्री चैतन्य ने उन सबका ध्यान आकृष्ट किया जो उनसे बचते फिरते थे, जिनमें तार्किक लोग बहुत प्रमुख थे, तर्क बहुत करते हैं, कैसे भगवान हो सकते हैं, हम तो नहीं मानते भगवान को, लेकिन सन्यासी, ओ सन्यासी है, हाँ नमस्कार, सन्यासी को नमस्कार कर रहे हैं। संन्यास कारी या प्रभु कैला आकर्षण जते के पलाया छिले तार्किकादिगण। इस प्रकार विद्यार्थी, पाखंडी, सकाम कर्मी और निंदक ये सभी भगवान के चरण कमलों में आकर आत्मसमर्पण करने लगे। सन्यासी के रूप में सन्यासी महाराज को नमस्कार है, है ना। पांडु या पाखंडी कर्मी निंदा का दे जाता है तारा आसे प्रभु पाए है अवे नत। श्री चैतन्य ने उन सबको क्षमा की, क्षमा प्रदान की, उनके अपराधों को क्षमा भी कर दिया। सन्यासी के रूप में भी भगवान को कोई नमस्कार करे तो वह अपराधों से छूट जाए। श्री चैतन्य इतने कृपालु हैं, उन्होंने कपट संन्यास स्वीकार किया। भगवान थोड़ी संन्यास तो कुछ भी नहीं है, वे तो परमेश्वर हैं, भगवान हैं, उन्हें संन्यास लेने की आवश्यकता है, लेकिन संन्यास लिया कि किसी प्रकार से भी कोई उनको सम्मान तो दे है? और भगवान को क्षमा कर दिया और सभी भक्ति के समुद्र में डूब गए। कोई ऐसा नहीं था जो श्री चैतन्य के प्रेम के जाल से बच पाए। उनका प्रेम का जाल है ना बहुत फैलाया। अपराध अच्छा माइल डूबी ले प्रेम जले के बाएड़ाई बे प्रभु प्रेम महाजाले। श्री चैतन्य समस्त पतितों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, अतः उन्होंने उन्हें माया के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए अनेक उपाय ढूंढे। लोग माया से नहीं छोड़ना चाहते हैं और भगवान उनको माया से छुड़ाने के लिए कई उपाय करते हैं, हैं? वो बचते हैं भागते हैं, लेकिन भगवान कुछ ना कुछ चाल ऐसे चलते हैं कि माया से छूटे हैं। सभा निस्तारी ते प्रभु कृपा अवतार है, सभा निस्तारी ते करे चातुरी अपार है। सभी लोग यहाँ तक कि म्लेच्छ और यवन भी श्री चैतन्य के भक्त बन गए। केवल शंकराचार्य के निर्विशेषवादी मायावादी अभी भी बच गए, अब भी बच गए कुछ। तबे ने जय भक्त कैला जाते म्लेच्छ आदि सबे एड़ा एले मात्र काशी मायावादी। काशी की जो मायावादी अभी भी बच गए। जब श्री चैतन्य वृंदावन जाते समय काशी से होकर गुजर रहे थे तो मायावादी सन्यासियों ने अनेक प्रकार से उनकी निंदा की, और निंदा करना भगवान की निंदा करना अपना ही नुकसान है। तो वे प्रेम के जल में नहीं डूबे और अभी भगवान की निंदा कर रहे हैं। भगवान आए काशी में तो निंदा करते हैं भगवान की। वृंदावन जयते प्रभु राहिला काशी ते मायावादी गण तारे लागिले निंदिते। और निंदक क्या बोले, सन्यासी होकर ये वेदांत का अध्ययन नहीं करता है, भगवान को बोलते हैं। सन्यासी होकर के ये वेदांत का अध्ययन नहीं करता है और बदले में नाचने और कीर्तन करने में लगा रहता है। सन्यासी के लिए बड़ी लज्जा की बात है कि सड़क में नाचना और कीर्तन करना। संन्यास लिया है तो कैसे रहो, तन के रहो ऐसे है? नाचना और कीर्तन करना इतना सस्ता काम नहीं करना चाहिए सन्यासी को, उनका ये कहना है। ये सन्यासी होकर के सड़क में नाचता है कीर्तन करता है और वेदांत का अध्ययन नहीं करता है। सन्यासी है या करे गाया न नाचन न करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। ये चैतन्य तो अनपढ़ सन्यासी है, भगवान की निंदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अशिक्षित है। भगवान कहते हैं अशिक्षित है, अशिक्षित सन्यासी है, वो अपने कर्म को नहीं जानता है, वो मात्र भावों में बहकर अन्य भावकों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। तो कैसे भगवान की निंदा कर रहे हैं, है ना। मूर्ख सन्यासी ने जय धर्म ना ही जाने भावों के है या फेरे भावों के रे सने। ये सारी निंदा सुनकर श्री चैतन्य मन में हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, वो भगवान को मूर्ख कह रहे हैं और भगवान समझ रहे थे कितने मूर्ख हैं ये लोग, मैं इनके ऊपर कृपा करना चाहता हूँ तो ये लोग कृपा नहीं ले रहे हैं। इन सारे दोषों को अस्वीकार करते उन्होंने मायावादियों से बात नहीं की, मायावादियों से बात नहीं की। ऐसा वैसो नहीं है प्रभु हासे माने माने उपेक्षा कर या कारो न कैले संभाषण। इस प्रकार काशी के मायावादियों की निंदा की उपेक्षा करते हुए श्री चैतन्य मथुरा की ओर आगे बढ़े और मथुरा जाने के बाद पुनः लौट आए। कहाँ पर, काशी लौट आए। उपेक्षा कर या कैला मथुरा गमन मथुरा देखी या पुनः कैला आगमन। इस बार श्री चैतन्य चंद्रशेखर नामक कायस्थ के घर में रुके, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं। शूद्र के घर में भी भगवान रुक सकते हैं, भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं है कि भाई ब्राह्मण का विचार करें कौन ब्राह्मण है कौन ब्राह्मण नहीं है, किसी घर में रुकना किसी घर में नहीं रुकना। शूद्र के घर में भी भगवान रुक सकते हैं, भगवान तो प्रेम के अधीन है। काशी ते लेखक शूद्र श्री चंद्र से कह रहे तार घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। श्री चैतन्य तपन मिश्र के घर पर भोजन करते थे, चंद्रशेखर के घर में रहते थे और तपन मिश्र के घर में भोजन करते थे। वे ना तो अन्य संन्यासियों से मिलते जुलते थे और ना उनका निमंत्रण स्वीकार करते थे। सन्यासी नफरत करते हैं भगवान से, तो भगवान भी उनसे नफरत करते हैं, तो भगवान भी उनसे नहीं मिलते हैं। तपन मिश्र घर भिक्षा निर्वाहन, सन्यासी रे संगे नाई माने निमंत्रण। जब सनातन गोस्वामी बंगाल से आए, सनातन गोस्वामी मुसलमान शासक की सेवा में लगे थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बंगाल से आए, तो वे श्री चैतन्य से तपन मिश्र के घर में ही मिले, जहाँ श्री चैतन्य उन्हें भक्ति की शिक्षा देने के लिए लगातार 2 महीने तक रहे। अकेले सनातन गोस्वामी को भक्ति की शिक्षा दी, सबको छोड़कर के एक व्यक्ति को भक्ति की शिक्षा दी 2 महीना लगातार। सनातन को सन्यासी तहाई में लीला, तार शिक्षा लागी प्रभु तुमा से रहीला। श्री चैतन्य ने गूढ़ निर्देशों को प्रकट करने वाले श्रीमद् भागवत के आधार पर सनातन गोस्वामी को भक्त के सभी नियम की शिक्षा दी। तारे से काई लासा वैष्णव वीर धर्म भागवत आदि शास्त्र जत गूढ़ मर्म। इसी बीच में चंद्रशेखर और तपन मिश्र दोनों बड़े दुखी हुए, अतः उन्होंने भगवान के चरणों में एक प्रार्थना की। क्यों दुखी हुए? कि मायावादी लोग निंदा कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान के चरणों में एक प्रार्थना की दोनों ने। कौन दोनों? तपन मिश्र और चंद्रशेखर। इति मध्य चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखी है या प्रभु पाए कैला निवेदन। बात नहीं, आपस में कोई बात नहीं, जो खड़े हैं या बैठे हैं आपस में कोई बातें नहीं करेंगे। बातें करना है तो बाहर जा सकते हैं, बहुत जगह है बातें करने की, यहाँ बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। अब क्या प्रार्थना की भगवान से? हम लोग कब तक आपके विरोध करने वाले इन की निंदा को सहन करेंगे? आपके विरोधियों के द्वारा जो आपकी निंदा हो रही है, कब तक हमें सहन करना पड़ेगा? ये दुख होता है, ये दुख की बात है, हमें कब तक सहन करना पड़ेगा? ऐसी निंदा सुनने से अच्छा है कि हम अपने प्राण त्याग दें। कहते के सोने वे प्रभु तो मारे निंदन न पारे सहित वे छाणी वे जीवन। सारे मायावादी सन्यासी आपकी निंदा कर रहे हैं, हम ऐसी निंदा सहन नहीं कर सकते, क्योंकि ये निंदा हमारे हृदय को विदीर्ण कर रही। तुम्हारे निंदा ए जत सन्यासी रहगण, सुने ते ना पारी फाटे हृदय श्रवण। जब तपन मिश्र और चंद्रशेखर इस तरह से चैतन्य से बातें कर रहे थे, तो वे थोड़ा मुस्काए और चुप रहे। भगवान जो है सब कुछ जानते हैं, हजारों उपाय हैं भगवान के पास, तो भगवान हंसे और चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। उसी समय एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया, तुरंत ही उपाय हो गया। भगवान हंसे और भगवान के हंसने से उपाय हो गया, भगवान कुछ नहीं बोले। और एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया उसी समय, यह सुन राय प्रभु ऐसा तहसिया सही काले एक विप्रमी लीले आसिया। वो ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य के चरण कमलों पर गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। आसी ने वेदन करे चारण धारिया एक वस्तु मांगो दे प्रसन्न हैया। हे प्रभु, मैंने काशी के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया है, यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब देखो जो उनको कष्ट था, तपन मिश्र और चंद्रशेखर को कष्ट था कि आपकी निंदा कर रहे हैं, तो वो जो है तुरंत ही उपाय हो गया। एक व्यक्ति जो है बोला कि सब काशी के सन्यासियों मैंने अपने घर में बुलाया है, आप आ जाइए, आप भी आ जाइए। सकल सन्यासी मई कैलो निमंत्रण तुम्हें यदि आयस पूर्ण है मोर मन। हे प्रभु मैं जानता हूँ आप अन्य सन्यासियों से कभी मिलते जुलते नहीं हैं, किंतु आप कृपया मेरे पर दया कीजिए और मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। न जाहे सन्यासी गोष्ठी यह आमे जाने, मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। श्री चैतन्य ने हंसते हुए उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा करने के लिए ही ऐसा किया था। प्रभु हासे निमंत्रण कैला अंगीकार है, सन्यासी रे कृपा लागे ए भंगी ताहार। वो ब्राह्मण जानता था कि श्री चैतन्य कभी किसी अन्य के घर नहीं गए, फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लें। सेवे प्रजाने ने प्रभु न जान कार घरे, तारे प्रेरणाए तारे अत्याग्रह करे। अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य उस ब्राह्मण के घर गए तो उन्होंने वहां पर काशी के सारे सन्यासियों को बैठा हुआ देखा। बाद ने आरे देने गेला प्रभु से विप्र भावाने, देखी रे ने बसी अच्छे सन्यासी रे गाने। जो ही श्री चैतन्य ने सारे सन्यासियों को देखा तो ही उन्होंने सबको नमस्कार किया, भगवान ने नमस्कार किया, सन्यासियों को देखकर के नमस्कार किया और तब वे अपने पांव धोने चले गए। पांव धोने के बाद उसी स्थान पर बैठ गए, जहां पैर धोए वहीं पर बैठ गए। सभा नमस्कार गेला पाद प्रक्षालाने, पाद प्रक्षालाने कार्य वसी लसे स्थाने। सुन रहे सब लोग ध्यान से, सबसे पहले तो सन्यासियों को नमस्कार किया और फिर पैर धोने के लिए गए और कहां पर बैठ गए, पैर धोने के स्थान पर ही बैठ गए। तो पैर धोने के स्थान पर क्यों बैठ गए, विनम्रता दिखाने के लिए कि मैं बहुत नीच हूं। सन्यासियों को नमस्कार किया और अपनी तुच्छता दिखाने के लिए कि मैं बहुत तुच्छ हूं। भगवान जो है पैर धोने के स्थान पर ही बैठ गए। साबा नमस्कार गेला पादे प्रक्षालने, पादे प्रक्षालने कारी वसीला से स्थाने। भूमि पर बैठने के बाद और वो बड़े बड़े आसनों पर बैठे और भगवान जो है जमीन पर बैठ गए। श्री चैतन्य ने करोड़ों सूर्यों के समान तेज प्रकट किया, अपनी योग शक्ति द्वारा करोड़ों सूर्यों का तेज प्रकट किया। नीचे तो बैठ गए, अब सब सन्यासी देखें तो बड़ा आश्चर्य। बसी अकारी लाके चो ऐश्वर्य प्रकाश है, माते जो मैं बप कोटि सूर्याभास है। जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य के शरीर का वो प्रकाश देखा तो चित्त आकृष्ट हो गए, सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। अब ऊपर के आसन पर कैसे बैठे, भगवान जो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जिनसे निकल रहा है वो तो नीचे बैठे जमीन में बैठे हैं, अब हम ऊपर कैसे बैठे। प्रभावे आकर्षिल सब सन्यासी रहमन, उठे ले सन्यासी सब छाड़ी आसन। उन सारे मायावादी सन्यासियों के मुखिया का नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। उसने खड़े होकर बड़े सम्मान के साथ श्री चैतन्य को इस प्रकार संबोधित किया। प्रकाशानंद नाम है सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहे लेके चुकारी या सम्मान। क्या बोला, हे श्रीपाद कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए, आप उस अपवित्र स्थान पर क्यों बैठे हैं, आपको किस बात का दुख हो रहा है। प्रकाशानंद सरस्वती बोले, यहाँ आए सोना श्रीपाद है, आप अपवित्र स्थान है वैसा की बा आवे साध। श्री चैतन्य उत्तर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूँ, अतएव आप लोगों के साथ बैठने योग्य नहीं हूँ। तो प्रकाशानंद कहते हैं कि आपको किस बात का दुख हो रहा है जो आप ऊपर नहीं बैठ करके नीचे बैठ रहे हैं। तो भगवान क्या बोले, नहीं नहीं मुझे दुख नहीं हो रहा है, मैं सुखपूर्वक बैठ रहा हूँ, क्योंकि मैं नीच हूँ आप लोगों से इसलिए मैं नीचे बैठा हूँ। भगवान के मेरा कोई दुख नहीं है। प्रकाशानंद कहते हैं, आपको दुख किस बात का है, आप ऊपर बैठिए। तो भगवान के नहीं, तो कोई बात नहीं है, मेरे सुख की बात है कि मैं नीचे बैठा हूं। प्रभु कहे आमि हाई हीन संप्रदाय तो मसा बरसा भाई वासी ते न जो जाए। किंतु प्रकाशन सरस्वती ने स्वयं श्री चैतन्य का हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बैठाया, हाथ पकड़ करके बैठाया। आपने प्रकाश आनंद हाथे ते धारिया बसाई ला सभा मध्य सम्मान करिया। फिर बोले मेरी समझ में आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आप तो श्री केशव भारती के शिष्य हैं और इसलिए आप बड़े धन्य हैं। पूछ ले तुम्हार नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती शिष्य ताते तुम धन्य। आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं और हमारे गांव काशी में रहते हैं, फिर आप हम लोगों का संग क्यों नहीं करते हैं, आप हमसे मिलने से क्यों कतराते हैं। संप्रदाय एक सन्यासी तुम्ही रह एही ग्रामे की कारण आमा सबर न करे दर्शने। आप तो सन्यासी हैं फिर भावकों के साथ अपने संकीर्तन करने और नाचने में क्यों लगे रहते हैं। सन्यासी होकर के भावुकों का संग करते हो, कीर्तन करते हो, नाचते हो, यह आपको शोभा नहीं देता। प्रकाशन सरस्वती अब निंदा की तरह नहीं बोल रहे हैं बल्कि समझाने की तरह बोल रहे हैं कि आप तो बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं, आप ऐसे नीच कार्य क्यों कर रहे हैं। कीर्तन करना और नाचना सड़क में, उनका विचार था भाई ये नीच कर्म है, आप सन्यासी का सम्मान खो रहे हैं। सन्यासी हाई यकार नर्तन गायन भावुक सब संगे लै यकार संकीर्तन। अरे आप सन्यासी होकर के ध्यान करिए, वेदांत का ध्यान करिए, इन भावुकों के साथ नाचने के लिए अपने कर्तव्य का त्याग क्यों कर रहे हैं। वेदांत पठन ध्यान सन्यासी रे धर्म ताछाड़ी कर के ने भावु घेरे कर्म। आप स्वयं नारायण के समान प्रभाव में, आप तो प्रभाव में स्वयं नारायण के समान हैं, फिर आप नीच कर्म क्यों कर रहे हैं। प्रभावे देखी है तो माँ साक्षात नारायण ही नाचार कार्य के न इथे के कारण। श्री चैतन्य ने प्रकाशन सरस्वती को उत्तर दिया कि कृपया कारण सुनिए, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मुझे डांटा। भगवान कह रहे हैं मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत मूर्ख समझ करके मुझे डांटा। भगवान कह रहे हैं प्रभु कहे सोन श्रीपाद इहारे कारण गुरु मोरे मूर्ख देखे करी ले शासन। क्या बोले मेरे गुरु मुझे डांट करके बोले, क्या बोले तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो, अतः तुम्हें चाहिए सदैव कृष्ण का नाम जप करो, ये समस्त मंत्रों का सार है। मूर्ख तुम्हें तो मारना है, वेदांत अधिकार है, कृष्ण मंत्र जप है सदा यही मंत्र सार है। मेरे गुरु ने मुझे डांटा और ये कहा। भगवान जो है देखो ये सब शिष्टाचार बतला रहे हैं। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से भौतिक संसार से छुटकारा मिल जाएगा, केवल हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करने से भगवान के चरण कमलों के दर्शन भी हो जाएंगे, तो तुमको वेदांत अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं है। तुम मूर्ख हो तो इसी सरल विधि से ही तुम्हें कृष्ण के चरणों का कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण मंत्र है ते यहावे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पावे कृष्ण रे चरण। इस कलयुग में कृष्ण नाम के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि समस्त वैदिक मंत्रों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। नाम बेनु काली काले ना ही आ रहे धर्म सर्व मंत्र सारे नाम ए शास्त्र मर्म। हरे कृष्ण मंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे दूसरा श्लोक सिखाया और मुझे उपदेश दिया कि मैं सदैव अपने कंठ में इस श्लोक को रखूं। एते बलि एक श्लोक है सिखाए ले मोरे कंठकारी, ये श्लोक कारी है बेचारे। एक तो कृष्ण नाम मंत्र का जप करने की आज्ञा दी उन्होंने और फिर एक श्लोक सिखाया मुझे। क्या सिखाया? इस कलयुग में एकमात्र गति हरि नाम है, हरि नाम है, हरि नाम है। अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जो कि मुझे गुरु की आज्ञा मिली तो मैं हर समय नाम लेता हूँ और नाम लेते लेते मेरा जो मन है वो बड़ा भ्रांत हो गया। भगवान कहते हैं भगवान जो है एक मूर्ख की तरह अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज ने मुझे डांटा तो मैं मूर्ख हूँ और गुरु महाराज अगर मुझे डांटते हैं तो ये मेरे लिए अच्छा है। तो भगवान जो है इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं। भगवान जगत गुरु हैं तो स्वयं मूर्ख बन करके हम मूर्खों को शिक्षा देते हैं कि मूर्ख को जो है अगर गुरु डांटते हैं तो उससे उसका लाभ होता है। मैं मूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने मुझे डांटा तो उससे मुझे बहुत लाभ हुआ और मुझे डांट करके क्या बोले कि तुम केवल कृष्ण नाम उच्चारण करो और वेदांत का अध्ययन मत करो तो मैं कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगा। अब भगवान मूर्ख की तरह बता रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ और मैं कृष्ण नाम उच्चारण करता था तो क्या हो गया, मेरा मन बड़ा भ्रांत हो गया। यही आज्ञा पाइया नाम लई अनुचरण नाम लेते लेते मोर भ्रांत हैला मन। नाम लेते लेते मेरा मन क्या हो गया, भ्रांत हो गया और मैं अपने आप को भूल करके और उन्मत्त हो गया और हंसने लगा और क्रंदन करने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। अब ये मेरा तो बुरा हाल हो गया। धैर्य धारी ते नारी हैला में उन्मत्त हंसी कांदे नाचे गाई जय छे मदे मत्त। तो मेरे तो एकदम पागलपन आ गया। अब ये क्या हो गया, इसलिए मैं सोचने लगा कि कृष्ण के नाम कीर्तन ने मेरे ज्ञान का जो है मेरे ज्ञान को ढक दिया। तबे धैर्य धारी माने कारी लो बेचारे कृष्ण नाम ज्ञान अच्छन है ले आमार। तो मैंने क्या सोचा कि कृष्ण के नाम से मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है, मेरा तो सब ज्ञान खत्म हो गया, मैं पागल हो गया। अब मेरे मन में धैर्य नहीं रहा और ये जिस चिंता से मैंने गुरु के चरणों में बताया कि तो उल्टा हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। पागल है ला आमे धैर्य ना ही माने ये तो चिंते ने वे दिलू गुरु रे चराने। भगवान जो है बिल्कुल मूर्ख की तरह है अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं कि गुरु के सामने एकदम मूर्ख बन करके रहो। फिर मैंने गुरु जी से पूछा कि आपने कैसा मंत्र दिया है, हैं गुरु महाराज आपने कैसा मंत्र दिया है, इस मंत्र ने मुझको तो पागल कर दिया, मैं तो पागल हो गया हूँ। कीवा मंत्र दीला गोसाई की बात आ रे बल जपिते मंत्र कारीला पागल। महाराज गुरु महाराज आपने कैसा मंत्र दिया मुझको, हैं और इसकी शक्ति क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो जपते जपते पागल हो गया, अब क्या होगा मेरा। ये जो मंत्र है ये मुझको जो है नचाता है, कभी हंसाता है और कभी मुझे रुलाता है। और तो गुरु जो है सुनकर के हंसे और बोले हंसाए नाचाए मोरे कराए करंदन ये दसोने गुरु हंसो बलीला बचन। तो गुरु हंस करके बोले मतलब क्यों हंसे, मुझे मूर्ख समझ करके कि मैं मूर्ख हूँ इसलिए मेरा कितना लाभ हो रहा है, मैं समझ नहीं रहा हूँ और मैं अपना नुकसान सोच रहा हूँ। तो वो हंस करके बोले बोले कि कृष्ण नाम का जो महामंत्र है इसका यही स्वभाव है कि जो जप करता है उसे कृष्ण का जो है भाव उसको प्राप्त हो जाता है। कृष्ण नाम महामंत्र यही था स्वभाव, जय जप्य तारे कृष्ण ओ पे जय भाव। और जो कृष्ण प्रेम है ये परम पुरुषार्थ है और जिसके आगे चारों पुरुषार्थ तिनके के समान तुच्छ हैं। कृष्ण विष यज्ञ प्रेमा बारह में पुरुषार्थ है, जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ है। तो ये तुमको तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, ये तो इतना बड़ा लाभ है कि चारों पुरुषार्थ जो है तिनके के समान है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, ये तुम्हारे लिए अब तिनके के समान हो गए हैं। तुमको तो प्रेम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया है और तुम समझ नहीं रहे हो, तुम बड़े मूर्ख हो। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि तुमको तो करोड़ों रुपए का लाभ हो गया है और तुम इतने मूर्ख हो, तुम सोचते हो तुम्हारा नुकसान हो गया। पंचम पुरुषार्थ प्रेम आनंद का अमृत समुद्र है, जिसमें मोक्ष का जो आनंद है वो एक बूंद के बराबर भी नहीं। मोक्ष का आनंद तो एक बूंद के बराबर भी नहीं है, ये तुमको प्रेम पुरुषार्थ प्राप्त हुआ है। पंचम पुरुषार्थ प्रेम आनंद अमृत सिंधु मोक्षादि आनंद जार ना है एक है बिंदु। सभी शास्त्रों का ही निर्णय है कि अपना सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत करना चाहिए और तुम्हारा वो कृष्ण प्रेम जागृत हो गया है, तुम तो इतने भाग्यशाली हो और मूर्ख होने के कारण अपने को अभागा मान रहे हो। तुम इतने मूर्ख हो कि तुमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और तुम अपने को अभागा समझ रहे हो। मेरे गुरु ने मुझे फिर समझाया कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ। कृष्ण नाम इरफल है प्रेमा सर्व शास्त्र काए, भाग्य से ही प्रेमा तो माए कारिल है उदय। और प्रेम की स्वभाव है कि दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं और कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए लोभ पैदा होता है। प्रेमार स्वभाव कार्य चित्त तान हो क्षोभ है, कृष्ण रे चरण प्राप्त ओ पे जाए लोभ है। और जब प्रेम का स्वभाव है कि भक्त हंसता है और रोता है और कभी गाता है और पागल होकर के नाचता है और इधर उधर भागता है, तो ये तो तुम्हें प्राप्त हो गया। प्रेमारा स्वभाव है भक्त हंसे कांधे गाए, उनमत हई या नाचे इति ओति धाए। और इस प्रेम में कभी पसीना आता है, कभी कमकमी होती है, कभी रोमांच होता है, कभी आंसू आते हैं, कभी कंठ गदगद हो जाता है, कभी शरीर पीला पड़ जाता है, कभी पागलपन होता है, कभी विषाद, कभी धैर्य, कभी गर्व, कभी हर्ष, कभी दीनता, ये विविध लक्षण हैं कृष्ण प्रेम के। स्वेदकम पे रोमांचाश्रु गद गद वर्ण उन्माद बेसाद धैर्य गर्व हर्ष दैन ये भावे प्रेमा भक्तर गाने रे नाचाए कृष्ण रे आनंद अमृत सागर भाषाए। तो यहीं पर ही हम विश्राम करेंगे। आज बहुत सुंदर ये कथा हुई है कि भगवान जो है मूर्ख की तरह अपने को बताते हैं कि मैं गुरु के जो आदेश का पालन करता रहा और मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया और मैं नहीं जानता था कि मुझे इतना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। तो गुरु ने ही मुझे बताया कि तुमको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है ना। तो बहुत सुंदर कथा है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, एक आध प्रश्न कर सकते हैं या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ। ठीक है। तो भगवान ने जो है पंच तत्व के रूप में प्रेम की बाढ़ पैदा करी और सबको डुबा दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग बच गए। कौन से लोग थे जो भाग गए और अपनी रक्षा कर ली? कौन कौन से लोग थे वो?
मायावादी,
सकाम कर्मी, निंदा करने वाले, तार्किक, ऐसे लोग हैं। तो उनको जो है फिर उन्होंने कुछ दूसरा उपाय किया उनको डुबाने का। क्या लिया? संन्यास लिया। तो सन्यासी के रूप में भी वो आए और भगवान के चरणों को प्रणाम किया तो उसे भी वो प्रेम पा गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं और भगवान की निंदा कर रहे हैं, सन्यासी के रूप में भी निंदा कर रहे हैं, और वो कौन है? काशी के मायावादी। लेकिन अब वो भी आ गए, भगवान के चक्कर में आ गए, है ना। और भगवान अपने को मूर्ख बता करके और बता रहे हैं कि ये कृष्ण का जो नाम है ये कितना बड़ा और कितना ऊंचा है, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।